हम उनके संग संग रहे थे, वो अपने संग संग रहे थे।
ओम शांति। आप सभी ने अभी अभी शीलू बहन के द्वारा अनादि स्वरूप की स्थिति क्या होती है कमेंट्री के द्वारा आपने अनुभव किया। न सिर्फ आप कमेंट्री सुन रहे होंगे, लेकिन सुनते सुनते वैसी स्थिति भी बना रहे होंगे। अब शीलू बहन से मैं समझती हूँ कि आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं, फिर भी थोड़ा सा परिचय हम जान लेना चाहेंगे कि आपने 1959 में ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त किया। आपने बम्बई में ही बीएससी यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। बाबा के शब्दों में कहें तो ये कहा जाता है कि जिनके चलन और चेहरे में सत्यता की सभ्यता हो, आप ऐसी ही हस्ती हैं जो निर्मल और तेजस्वी वाणी के द्वारा विश्व के कोने कोने में टीवी माध्यम से बाबा का संदेश देने का कार्य करती हैं। जी टीवी, सोनी टीवी, आस्था, शक्ति इत्यादि कई विभिन्न चैनल्स के द्वारा आप बाबा के इस ज्ञान को अनेक आत्माओं तक पहुंचाने का कार्य कर रही हैं। आपने 5 खंडों में 60 देशों से भी अधिक भ्रमण किया है। कई स्थानों पर आपने सम्मेलन, महासम्मेलनों में भी भाग लिया है। आपके लिए इतना जरूर कहेंगे कि हीरो सी चमक आप में, सोने सी धमक आप में, आपकी एक झलक जो पाए ज्ञान सागर की लहरों में वो खो जाए। आपके लिए बाबा ने भी कहा था कि आपके जीवा पर सरस्वती विराजमान है, वह तो आप सभी क्लासेस से लाभ लेते हैं, अनुभव करते ही हैं। आज भी हम आपके द्वारा क्लास से यह लाभ जरूर लेंगे। अभी का विषय है सर्वश्रेष्ठ साधना नष्ट मोहा स्वरूप। आदरणीय शीलू बहन से निवेदन है कि इस विषय पर प्रकाश डालेंगे, उसके पश्चात इसी का ही योग अभ्यास भी करवाएंगे।
ओम शांति। फिर से एक साथ सभी कहेंगे ओम शांति। आवाज में, आवाज से परे रहने के बाद फिर आवाज में भी आना होता है। आवाज से परे जाना, आवाज में आना, दोनों में से सहज कौन सा है? आवाज से परे जाना सहज है या आवाज में आना सहज है? आवाज से परे जाना सहज है, अच्छी बात है। आवाज से परे जाना सहज होना चाहिए, क्योंकि आत्मा का स्वरूप स्वधर्म है ही शांति, आत्मा का धाम है ही शांति धाम, वहां तो कोई आवाज नहीं है। ये दुनिया आवाज की दुनिया है, तो आवाज से परे जाना ये सहज होना चाहिए। परंतु आवाज में आना कईयों को बहुत सहज लगता है, आवाज से परे जाना मुश्किल लगता है। ये उनके लिए है जिनको आत्मा का ज्ञान नहीं है, सारा दिन आवाज में ही आते हैं, आवाज से परे जाना मुश्किल लगता है। परंतु जिनको अपनी आत्मा का ज्ञान है, अपने स्वरूप की पहचान है, अपने धाम का अनुभव है, अपने मूल स्वरूप में स्थित हैं, अशरीरी बन सकते हैं, उनके लिए आवाज में परे जाना सहज है। परंतु केवल आवाज से परे जाना ही सब कुछ नहीं है। आवाज से परे भी हो और मन का भी मौन हो, मन में भी कोई व्यर्थ संकल्प न हो, अशुद्ध का तो प्रश्न ही नहीं, साधारण संकल्प भी न हो, केवल श्रेष्ठ संकल्प हो, तब शांति की शक्ति आत्मा में जमा होती है। और यही शांति की शक्ति आत्मा को शक्तिशाली बनाती है। इसलिए हम सभी योग अभ्यास करते हैं ताकि आत्मा शक्तिशाली बने। और जो इस संसार में, इस दुनिया में, जीवन में जो चुनौतियां आती है, समस्याएं आती है, उनका हम सामना कर सके। सबसे बड़ी चुनौती माताओं के लिए आती है नष्टो मोहा होने की। बाबा कई बार कहते हैं कि काम और क्रोध, इसमें विजयी बनने के लिए पुरुषों को ज्यादा मेहनत लगती है, माताओं के लिए बड़ा सहज है काम और क्रोध को जीतना। परंतु माताओं के लिए जो मुश्किल होता है कई बार, वह है लोभ और मोह को जीतना। क्योंकि विस्तार में चले जाते हैं, अपनी रचना के विस्तार में चले जाते हैं, तो मेरापन आ जाता है, मैं और मेरा, इनकी उलझन में फंस जाते हैं, जिसके लिए बाबा कई बार मकड़ी का मिसाल देते हैं कि मकड़ी अपने मुख से ही जाला बुनती है, जिस जाले में वो रहती है वो अपने मुख से ही बुनती है, और अपने मुख से जाला बुनती जाती है, वो बड़ा करती जाती है और उसमें फंसती जाती है। जहां भी जाला होगा वहां मकड़ी जरूर होगी, क्योंकि अपने ही मुख से उसने जाला बुना है, जाल बुनी है। तो हम भी इस संसार में आए, आत्मा जब अनादि स्वरूप में है तो कोई देह नहीं, कोई देह के संबंध नहीं, कोई प्रकृति का आकर्षण नहीं। और शिव बाबा ने हम बच्चों को, हम आत्माओं को इस सृष्टि मंच पर भेजा कि जाओ बच्चे खेलो, इस कर्म क्षेत्र पर भेजा, क्योंकि आत्मा के अंदर कर्म करने के संस्कार हैं, इसलिए कर्म करने लिए कर्म क्षेत्र चाहिए। परंतु कर्म करते करते हम कितने उलझ गए, कितना फंस गए, कितने दुखी हो गए, तो फिर जब निकलने का समय आता है उससे, तो बड़ा मुश्किल लगता है। तो निकलने के लिए जैसे मकड़ी को वो जाला खुद में वापस ले लेना पड़ता है तभी वो निकल सकती है, या तो उसको तोड़े या तो उस अपने अंदर ही फिर वापस निकल जाए, तब उस जाले से बच सकती है या छूट सकती है। तो हम लोगों ने भी जो मैं और मेरा का जाल बुन लिया, उसी में फंस गए, अब उसमें से निकलने के लिए, उनसे न्यारा होने के लिए अपने असली मैं और मेरे को समझना होगा, जिसको बाबा कहते हैं मैं कहने की आदत तो है, पर मैं आत्मा हूं ये साथ में जोड़ दें तो बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। मेरा 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 कहने की आदत तो है, लेकिन मेरा शिव बाबा ये जोड़ दें तो मेरे जो अनेक आकर्षण हैं उनसे आत्मा मुक्त हो जाएगी। अगर मुख से भी सदा बाबा 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 कहते रहे तो भी कितने बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए बाबा ने हमें यह युक्तियां बताई है कैसे मुक्त होना है, और मुक्त होना है जरूर अगर हम अपने स्वेच्छा से अपने पुरुषार्थ से मुक्त नहीं होंगे तो ड्रामा हमें मुक्त जरूर कराएगा। ड्रामा अनुसार भी हमें मुक्त होकर ही वापस जाना है। न ये व्यक्ति चलेंगे, न वैभव चलेंगे, न वस्तु चलेंगे, न ये शरीर चलेगा, आत्मा को तो अकेले ही जाना है। वो गीत भी गाते हैं ना, चल मुसाफिर चल, तुझे अकेले जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, तुम्हें पैदल ही जाना है। तो हम मुसाफिर बनकर आए इस संसार में, और फिर मुसाफिर के रूप में जो कुछ कार्य करना था किया, पर मुसाफिर को वापस अपना घर जरूर याद है। तो हमें बाबा उन राहों पर चलना सिखाते हैं जहां हमें बहुत संभल संभल कर चलना पड़ता है, क्योंकि फिसलन बहुत है, गिरने की संभावना बहुत है। आज भी बाबा ने मुरली में कहा, गीत था ना, हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। लेकिन हमें गिरना नहीं है, हमें संभलना ही है। गिरेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे, क्योंकि ये बड़ी मंजिल है, ऊंची मंजिल है, लक्ष्य बहुत ऊंचा है। इसलिए इस लक्ष्य को तक पहुंचने के लिए बहुत संभल कर चलना होगा। माया का ऑपोजिशन, विरोध भी जबरदस्त है, कई रूपों में माया आएगी, लेकिन उस माया को परख करके उसको हमें जीतना होगा। हमारे सामने अर्जुन का मिसाल है। अगर हम सारी गीता देखें, अर्जुन को लास्ट में, अंत में यह समझ आई कि मुझे मोह नष्ट करना है, परंतु पहले उसे समझ नहीं आई, इसीलिए तो उसने कितने सारे प्रश्न कर दिए भगवान से। भगवान ने कहा मारो, हम जानते हैं किस बात को मारो, मैं को मारो, मेरा को मारो, इस मोह को मारो, विकारों को मारो, क्योंकि वही दुश्मन है हमारे, व्यक्ति तो कोई दुश्मन है नहीं, परंतु ये विकार ही हमारे दुश्मन है। तो भगवान ने कहा मारो, पर आत्मा रूपी अर्जुन कहती है कैसे मारूं, कैसे मारूं। मारो अर्थात भूलो, क्योंकि जिसको तुम याद करते हो वो देहधारी स्वरूप, वो विनाशी है। विनाशी स्वरूप को याद करने से कोई प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि एक दिन वो विनाशी स्वरूप विनाश को प्राप्त होगा। इसलिए उस विनाशी स्वरूप को मारो, आत्मा को पहचानो। आत्मा का आत्मा के साथ तो एक ही संबंध है, भाई भाई का संबंध, अन्य कोई संबंध है ही नहीं। और हम सब आत्माओं का संबंध एक शिव बाबा के साथ है। आपस में भी जो हमारा संबंध है वो भी शिव बाबा के कारण ही है। इस ईश्वरीय परिवार में भी हम देखते हैं, आपस में भी जो हमारा संबंध है, भले लौकिक तो है ही नहीं, पर फिर भी इतना बड़ा संबंध है क्योंकि सारा कल्प हमने साथ में ही पांट बजाया होगा, तभी तो एक परिवार के फिर से बन गए। परमधाम में भी साथ थे, सत्युग से लेकर साथ में ही पांट बजाया होगा, फिर बिछड़ गए एक दो से, और अब संगम युग पर फिर आकर के एक हुए हैं, एक ही ईश्वरीय परिवार बना है। लेकिन इस संबंध का आधार क्या है? शिव बाबा है। शिव बाबा को बीच से निकाल दो तो संबंध कुछ है नहीं। देह का संबंध तो नहीं है ना, देह के जहां संबंध होते हैं वहां ब्लड रिलेशन होता है, खून का रिश्ता होता है, वो कर्मों का हिसाब किताब होता है। लेकिन हम लोगों का आपस में कर्मों का हिसाब किताब नहीं है, पर आत्मा के नाते से भाई भाई है। और जहां शिव बाबा को बीच में लाया तो कर्मों का हिसाब किताब नहीं बनता है, परंतु शिव बाबा को निकाला तो कर्मों का हिसाब किताब बन जाएगा, फिर उसको चुप्तू करना पड़ेगा। शिव बाबा उस चुंबक की तरह है जो हम सब सुइयों को एक करके रखा है, और उस शिव बाबा को निकाल दिया तो सब अलग हो गए, क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब तो नहीं है ना। लेकिन बाबा ने कहा मारो, अर्थात इस देह के आकर्षण को मारो, मेरेपन को मारो, और केवल आत्मा देखो। और वो आत्मा भी शिव बाबा की ही संतान है, ये देखो। मेरा भाई है ये भी नहीं सोचो, मेरा बच्चा है ये तो बहुत दूर की बात, पर मेरा भाई है ये भी नहीं सोचो, ये शिव बाबा की संतान है। मेरा है तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, इसको मारो। तो इस मैं और मेरे को मारो, तब आत्मा की दृष्टि बनेगी, तब आत्मा आत्मा भाई भाई निश्चय करेंगे, तब मोह को जीत सकेंगे। जब तक ये दृष्टि नहीं अपनाई है आत्मा आत्मा भाई भाई की, तब तक मोह को जीतना बड़ा मुश्किल है। इसलिए अर्जुन को भी सबसे पहले ही आत्मा का ही ज्ञान दिया, परंतु अर्जुन ने इसे समझा नहीं। तब परमात्मा ने दूसरी युक्ति रची, कैसे इसे मोह से मुक्त कराएं। तो भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, ये सब मरे ही पड़े हैं, इनकी मौत तो निश्चित ही है। दिखा दिया उनको शमशान घाट, सब मरे पड़े हैं। तो जबकि इनकी मौत निश्चित ही है, कोई आप नहीं इन्हें मारेंगे, ये अपने आप इनको मरना ही है, इसलिए आप केवल अपना कर्तव्य निभाओ, क्योंकि ये आपका कर्तव्य है इस समय कि मोह को नष्ट करो, क्योंकि ये सब मरे ही पड़े हैं। जैसे किसी की मरणासन्न स्थिति होती है, मानो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, बस अभी ये 8 घंटे का मेहमान है, अभी ये 4 घंटे का मेहमान है, अभी 2 घंटे का मेहमान है, डॉक्टर कहेंगे ना, ये कभी भी जा सकता है, इस क्षण भी जा सकता है, तो जैसे जैसे डॉक्टर कहता है धीरे धीरे क्या होता है, हमारा उनसे मोह नष्ट होता जाता है। हम समझ जाते हैं बस अब ये गया कि गया, अब ये गया कि गया, अब ये जाएगा, अब ये जाएगा, तो धीरे धीरे मोह नष्ट होता ही जाता है। करना ही पड़ता है क्योंकि पता है जाना जाएगा, चाहे कितना भी मोह क्यों न हो उसके साथ। मुझे याद आती है एक घटना, एक सच्ची घटना है। पति पत्नी थे, आपस में इनका बहुत प्यार था, बहुत प्यार। एक दो के बिना खाना नहीं खाते थे, एक दो के बिना रहते नहीं थे, सदा ही साथ, सदा एक दो पर निर्भर, इतना मोह था आपस में। अब अचानक पति को हार्ट अटैक हो गया। अब जब पति को हार्ट अटैक हुआ तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया, मर तो नहीं गया पर अटैक बहुत भारी था, बच तो गया लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। तो जैसे हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो पत्नी रोज जाती थी, मतलब हॉस्पिटल में ही रहती थी, साथ में ही रहती थी, हॉस्पिटल में तो रह सकते हैं। परंतु थोड़े दिनों के बाद पता चला कि उसकी जो पत्नी थी उसको कैंसर हो गया। पहले तो पता ही नहीं चला कैंसर हो गया। अब जैसे मालूम पड़ा कैंसर है तो उसका ऑपरेशन करना जरूरी समझा, पता ही नहीं चला था पहले। अब पति एक हॉस्पिटल में, पत्नी दूसरे हॉस्पिटल में, तो वो कैंसर भी इतना फैल चुका था पत्नी को पता ही नहीं चला, बहुत फैल चुका था। तो डॉक्टर जवाब भी कैसे दे, डॉक्टरों ने कहा नहीं इनको हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा क्योंकि ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। अब वो एक हॉस्पिटल में, वो दूसरे हॉस्पिटल में, दोनों एक दो के बिना तो रह नहीं सकते थे, इतना मोह था आपस में। परंतु संयोग ऐसे बना जो वो अलग हॉस्पिटल में, वो अलग हॉस्पिटल में। आखिर ये स्थिति आई कि दोनों मरनासन लेकिन मर नहीं रहे हैं, एकदम हड्डियां हो गई वो औरत भी, उसका पति भी। ये सच्ची घटना है। उनके बच्चों ने मुझे ये सब बताया और मुझे ले गए थे वहां, मुझे बताया, यानी बताया कि ऐसी स्थिति है। तो डॉक्टर्स भी हैरान हो गए कि इनके शरीर में कुछ बचा ही नहीं है, हड्डियां हो गई हैं लेकिन मर नहीं रहे हैं। डॉक्टर भी हैरान हो रहे हैं, अब ऐसे तो नहीं उनको मार सकते हैं, डॉक्टर तो मार नहीं सकते। तो उनका जो एक बेटा था उस वो सेंटर पर कभी कभी आता था, किसी सेंटर की बात है, तो मुझे कहा कि बहन जी ऐसी स्थिति है, अब हमको समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। तो मैंने कहा उनसे, पूरी उनकी बातें पूछी, उनके माँ बाप की कैसी स्थिति, यानी तो कहा इनका आपस में इतना मोह है, इतना मोह है, लेकिन अभी कितने दूर हो गए हैं आपस से एक दो से। तो हमने कहा इसीलिए शरीर नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि एक दो से मिलना चाहते हैं, आप कैसे भी करके इन दोनों को कहीं न कहीं मिलाओ, एक दूसरे के पास जाए या दूसरा पहले के पास जाए, मतलब कुछ ऐसा इंतजाम करो कि ये दोनों एक दो को देख सके, तब शायद दे छोड़ेंगे। तो वो बेटा समझदार था, उसने कहा ठीक है। तो पति मतलब वो तो हार्ट का भी बहुत कमजोर हो गया था, पर किसी तरीके से उसको उनकी पत्नी के पास ले गए। और जैसे एक दो को देखा, एक दो की हालत देखी, एकदम जैसे पिंजरा बन गए थे, हड्डियों का ढांचा बन गए हैं दोनों। तो दोनों ने जैसे एक दो को देखा तो एक ने दूसरे को स्वीकृति दी कि अच्छा भले अभी जाओ, फिर दूसरे ने पहले को स्वीकृति दी कि अभी अच्छा तुम जाओ। और सचमुच 5 मिनट के अंतर में दोनों ही चले गए। 5 मिनट के अंतर में पहले एक गया या एक गई या वो पहले गई या पहले वो गया, मतलब 5 मिनट के अंतर में दोनों ही आत्माएं मुक्त हो गई। तब तक वो मुक्त नहीं हो रही थी जब तक उनका आपस में इतना मोह था। वो एक दो को विदाई देना चाहते थे, और जब तक विदाई नहीं दी एक दो को, तब तक आत्मा शरीर से जा ही नहीं रही थी। और जैसे एक दो को विदाई दी, आत्मा ही मुक्त हो गई दोनों। ये भी एक कर्मों का हिसाब किताब है। तो इतनी देर तक भोगना भोगना, हाँ सोचिए, क्योंकि मोह इतना था। तो बाबा कहते हैं कि ये कर्म भोग को तो चुकतू करना ही है, परंतु मोह से और कर्म भोग बढ़ता है, इसलिए योग से उसे चुकतू करो। योग से चुकतू करना माना सब संबंध एक से जोड़ना। ये मालूम है कि ये सब मरे ही पड़े हैं। बाबा जब अंत की बातें सुनाते हैं तो कितना बेहद का वैराग्य आता है कि बच्चे अंत के समय क्या होगा, कोई किसका संस्कार करने वाला भी नहीं बचेगा, कोई किसका दीपक जलाने वाला भी नहीं बचेगा। दीवा जलाते हैं ना मृतक देह के आगे, वो भी जलाने वाला नहीं बचेगा। कौन किसका संस्कार करेगा, कौन किसके आगे दीवा जलाएगा, कौन किसकी मानो किसके पितर खिलाएगा। आप सोचो ये सब जो अंत की स्थिति है, ये कैसी भयावह स्थिति होगी। लेकिन उस समय हमें कैसे अपने देह को छोड़ना है, जैसे मक्खन से बाल, जैसे मक्खन से बाल कैसे निकलता है, कितना सहज। मक्खन में अगर कहीं भूल से बाल पड़ गया हो तो निकलना सहज है ना, और रोटी में अगर बाल पड़ जाए तो, कई बार रोटी में आटे में बाल हो जाता है या रोटी में बाल होता है तो वो टूटता है, निकलते निकलते सारा एक साथ नहीं निकलाता, एक एक करके आधा आधा टुकड़ा टुकड़ा करके निकलता है, क्योंकि रोटी तो सख्त होती ना मक्खन की भेंट में, तो टुकड़े टुकड़े करके निकलता है बाल। परंतु हम आत्माओं को ऐसे शरीर छोड़ना है जैसे मक्खन से बाल, जैसे ढीले वस्त्र होंगे तो ढीले वस्त्र उतारना कितना सहज होगा, टाइट वस्त्र होंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। तो आत्मा भी तब अशरीरी यानी तब सहज रूप से शरीर छोड़ सकेगी जब उससे अशरीरी बनने का अभ्यास बहुत काल का होगा। आज भी बाबा ने मुरली में कहा अशरीरी बनो, अशरीरी बनो, क्योंकि यही अभ्यास अंत के समय काम आएगा। तो नष्टो मोहा होने के लिए बाबा कहते हैं ये देखो कि सब मरे पड़े हैं, दुनिया मरी पड़ी है, शमशान घाट से थोड़ी प्रीत रहती है, मुर्दों से क्या यारी, ऐसे कहते ना। तो इसीलिए ये संसार शमशान बनना है, ये याद रहे तो सहज ही मोह नष्ट हो जाए। ये अर्जुन को ये दिखाया, साक्षात्कार कराया, देखो ये सब मरे पड़े हैं, वास्तव में हम सब अर्जुन हैं। पर ये क्यों दिखाया, ताकि मोह नष्ट हो। लेकिन मोह नष्ट इतना सहज नहीं हुआ अर्जुन से। फिर भगवान ने तीसरी युक्ति रची, दो युक्तियों से तो मोह नष्ट नहीं हुआ अर्जुन का। पहली युक्ति थी आत्मा का ज्ञान दिया, दूसरी युक्ति थी कि उनको शमशान घाट दिखा दिया कि सब मरे पड़े हैं, तो भी मोह नष्ट नहीं हुआ। उसने कहा अच्छा अगर इनको मरना ही है तो अपने अपने सर मरे, मैं क्यों निमित्त बनूं उनको मारने के लिए, है ना। उसको यही था कि मैं उसको मुझे मारना होगा। लेकिन जब ये युक्ति सफल नहीं हुई तो भगवान ने तीसरी युक्ति अपनाई। तीसरी युक्ति क्या अपनाई, अर्जुन को कहा हे अर्जुन तुम पहचानो अपने आप को, आपका कर्तव्य क्या है, इस समय आपका कर्तव्य क्या कहता है। अगर तुम कायर बन जाओगे, मैदान को छोड़ दोगे, तो आपके आने वाली पीढ़ियां क्या सोचेगी तुम्हारे लिए कि मेरे पूर्वज तो कायर थे। इसलिए अपने कर्तव्य को पहचानो, तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का कर्तव्य होता युद्ध करना, इसलिए युद्ध से भागो मत, नहीं तो कायर कहलाओगे। अपने कर्तव्य को समझो। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे अब तुम्हारा कर्तव्य क्या है? ये नहीं है कि घर बार को छोड़ दो क्योंकि हम सन्यासी तो नहीं है। कर्तव्य का पालन भी करना है। जो गृहस्थ का कर्तव्य है, जिम्मेदारियां हैं, परिवार है, उसका भी पालन करना है कर्तव्य। क्योंकि छोड़ तो सकते नहीं है, हिसाब किताब तो है ना, वो कर्मों के हिसाब किताब तो बने हुए है ना। छोड़ देंगे तो फिर क्या, जब तक हिसाब किताब पूरा नहीं हुआ है, भले छोड़ भी देंगे तो भी मोह की रग तो जाएगी ना। जैसे सन्यासी छोड़ देते हैं, जंगल चले जाते फिर आ जाते हैं। तो बाबा कहते छोड़ो भी कुछ नहीं, लेकिन फंसो भी कहीं नहीं। यही तो कला है। जैसे रस्सी पर चलता हुआ व्यक्ति नहीं गिरता है क्योंकि उसके पास रस्सी पर चलने की कला है, बैलेंस है, एकाग्रता है। पर जिसमें एकाग्रता नहीं है, बैलेंस नहीं है, वो रास्ते चलते भी गिर जाएगा। पर जिसमें एकाग्रता है, बैलेंस है, वो रस्सी पर भी गिरेगा नहीं। अंतर हो गया ना। तो कोई धरती पर भी गिर सकता है और कोई रस्सी पर भी नहीं गिरता, चल तो दोनों ही रहे, पर दोनों के बीच में अंतर क्या हुआ? जो गिर जाता है धरती पर चलते हुए भी, उसमें बैलेंस की कमी है, एकाग्रता की कमी है, लक्ष्य की कमी है, ये सब कमियां हैं उसमें। तो जब तक दादी आए, तो इसीलिए तो जब अर्जुन को ये समझ दी कि अपने कर्तव्य को समझो, कर्तव्य का मतलब ये नहीं है कि जिम्मेदारी छोड़ दो, पर कर्तव्य का मतलब है कि भगवान के प्रति भी मेरा कुछ कर्तव्य है, उसको भी पहचानो। वो कर्तव्य निभाते हुए भी, क्योंकि निभाना है, छोड़ना नहीं है, फंसना भी नहीं है, निभाना है। न छोड़ना है, न फंसना है, न बढ़ाना है, पर निभाना है। अगर यहां नहीं निभाएंगे तो फिर धर्मराजपुरी में चुकतू करना पड़ेगा। तो यहां निभाना है, चुकतू तो करना ही है। निभाना है चुकतू करने के लिए, न कि बढ़ाने के लिए। ये भी अंतर है। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को कर्तव्य की बातें सुनाते कि अब इस समय तुम्हारा कर्तव्य क्या है, बाबा के प्रति कर्तव्य क्या है, अपनी आत्मा के प्रति कर्तव्य क्या है, ईश्वरीय परिवार के प्रति कर्तव्य क्या है, वो भी हमें समझना होगा। समय को पहचानना होगा, तब कर्तव्य की पहचान सही मिल जाएगी। परंतु अर्जुन ने फिर भी नहीं समझा, तब उसको लिए चौथी युक्ति रची भगवान ने। वो चौथी युक्ति क्या थी? अर्जुन को टेम्पटेशन दिया, प्रलोभन दिया, हे अर्जुन, अगर तुम विजयी बनोगे इस युद्ध में तो तुम तो वैकुंठ में जाओगे, स्वर्ग के अधिकारी बनोगे, अगर तुम इस युद्ध में विजयी बने तो। और अगर विजयी नहीं भी बनोगे तो भी तुम स्वर्ग में जरूर जाओगे, इसलिए उठो, हथियार उठाओ और युद्ध करो, तुम तो विजयी हो। देखो तुम्हारे विजय का ताज तुम्हारे सिर पर अब आने वाला है। भगवान ने उसको भविष्य का साक्षात्कार कराया कि विजयी तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तुम विजयी हो, यह पहचानो। तुम हार नहीं सकते, विजय तुम्हारा अधिकार है। तो अर्जुन को ये बात कही, पर अर्जुन क्योंकि मोह के वश था, वो कहे मुझे विजय विजय नहीं चाहिए, न स्वर्ग चाहिए, न राज्य चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, परंतु ये मैं क्यों मारूं, मेरे मामा चाचा काका मैं क्यों मारूं इन्हें, क्योंकि मोह के वश था। तो विजय को भी ठुकराने को तैयार था, यह क्यों? क्योंकि मोह के वश था। फिर जब भगवान ने देखा कि ये चारों युक्तियां नहीं चल रही है तो अंत में कौन सी युक्ति रची, भगवान ने अपने विराट स्वरूप का साक्षात्कार कराया और उसे कहा कि हे अर्जुन, पहचानो ये तुमको कौन कह रहा है, ये तुम्हारा दोस्त या मित्र नहीं कह रहा है, क्योंकि वो तो कृष्ण के रूप में देख रहा था, जैसे दिखाया शास्त्रों में भाई वो तो इसको अपने मित्र के रूप में देख रहा है। पर जब उसको ये समझाया कि तुम्हें ये कौन आज्ञा दे रहा है, स्वयं भगवान दे रहा है, ये कोई देहधारी नहीं दे रहा है, कोई मनुष्य नहीं दे रहा है, स्वयं परमात्मा सर्वशक्तिमान जो तुम्हारे पक्ष में है वो तुम्हें यह आदेश दे रहा है, तुम इस आदेश का पालन करो। और जिस समय दिखाते भाई विराट रूप का साक्षात्कार कराया किया उसने, तब उसको समझ में आई कि अरे ये तो भगवान मुझे कह रहे और मैं भगवान की बातों को ठुकरा रहा हूं क्योंकि मोह के वश हूं। और तब उसको समझ आई और तब भगवान के आगे ये कदम बढ़ाए और उनके पैर छुए, उनके आगे तदमस्तक हुए, कहा भगवान अब मैंने पहचान लिया आपको, अब आप जो मुझे कहोगे मैं करूंगा, अब मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे स्मृति आ गई है कि मुझे क्या करना है। तो देखिए अर्जुन कोई दूसरा थोड़ी था, कौन थे, कौन था अर्जुन, हम सभी। तो हम सभी वो अर्जुन हैं, जो अर्जन करे वो अर्जुन है, जो जिज्ञासा रखे, जो पुरुषार्थ करे, जो परमात्मा को अपना सच्चा साथी बनाए वही अर्जुन है। तो जब हम ये स्थिति अपनाएंगे तब ही हम नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बन सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे मेरा 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 कहना है तो बस मेरा बाबा यही कहो और छोड़ो तो छूटो। फंसेंगे तो फंसते जाएंगे क्योंकि ये दलदल के रूप में है। दलदल पहले अच्छी लगती है, जैसे कोई दलदल होती है ना, गीली मिट्टी होती है, उसमें अगर पैर रखो तो बड़ा अच्छा लगता है, गुदगुदी होती है, अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे उसमें फंसते जाते हैं, नीचे चलते जाते फिर डर लगने लगता, अरे मैं निकलूंगा कैसे, दलदल तो ऐसे ही होती है ना। इसलिए इस संसार का जो भी आकर्षण है, बाबा कहते हैं ये दलदल के समान है। इस दलदल में पहले आकर्षण है परंतु पीछे फंसना है। बाबा ये नहीं कहते कि साधनों का उपयोग मत करो, हम लोग भी तो करते हैं ना, परंतु साधनों का उपयोग करते हुए साधना को भूलो मत, क्योंकि ये साधन तो कभी भी नष्ट हो सकते हैं। इन साधनों का क्या कहना, ये तो प्रकृति के का तमो प्रधान स्वरूप है इस समय, तो साधनों के पीछे साधना को नहीं गंवाना है। दुनिया में तो यही हाल है, साधना तो है ही नहीं, साधनों के ही पीछे है। और जब ये साधनों का सहारा छूटेगा तो ओम शांति, है ना, यही हालत होनी है। आज भी बाबा ने कहा, देखो विज्ञान का कितना घमंड है, आज बताया ना बाबा ने मुरली में, समझते हम चंद्रमा में जाकर के प्लॉट खरीदेंगे, धरती पर बहुत जनसंख्या बढ़ जाएगी तो चंद्रलोक में जाकर के वहां प्लॉट लेंगे। रावण को भी यही था, रावण के लिए दिखाते न कि रावण ने सोचा सारी प्रकृति मेरे वश में है, चारों ही पहियों से चार तत्व लगे हुए थे, केवल एक तत्व को जीता नहीं था, आकाश तत्व, वायु अग्नि जल पृथ्वी तो उनके चार पहियों के साथ थे, पर आकाश को जीतने के लिए उसने क्या सोचा कि मैं आकाश तक या स्वर्ग तक सीढ़ी लगाऊं, ये उसकी इच्छा थी, और दूसरा सोने में सुगंध भर सकूं, लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी क्योंकि अभिमान बहुत था, मोह के वश था, लोभ के वश था, रावण माना क्या विकार, तो आज विज्ञान का इतना बड़ा पॉम्प है, उसको यूज क्यों नहीं करो? मना नहीं है, साधन भले यूज करो। कई हम लोगों को कहते हैं, आप लोग तो सन्यासी लोग हो, फिर ये एसी और पंखे और ये सब किस लिए? सन्यासी माना अलख निरंजन। हम कहते हैं, हम सन्यासी थोड़ी है, भगवान ने हमको पवित्र प्रवृत्ति मार्ग सिखाया है। हमारा लक्ष्य मुक्ति केवल नहीं है, जीवन मुक्ति भी है। तो जीवन में रहते मुक्ति का अनुभव ये पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का सूचक है। कमल समान जल में रहकर भी रहो, ये हमारा लक्ष्य है। तो संसार को छोड़ना नहीं है, संसार से भागे भी नहीं फिरना है, पर संसार में रहते हुए संसार हमारे में न रहे, ये हमको भगवान सिखाते। ये मध्य मार्ग है, राजयोग का मार्ग मध्य मार्ग है। एक मार्ग है बिल्कुल भौतिकता, मटीरियलिज्म, जो हम दुनिया में देखते हैं, भौतिकवाद, बस दुनिया का चकाचौंध, उसी को ही सब कुछ समझ लिया है, इंद्रियों के आकर्षण में ही फंसे हुए हैं और उसी को ही सब कुछ समझ रहे हैं। खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखा? अभी तो मौज करने का समय है ना, कल क्या होगा, जो होगा हमें क्या, अभी तो अभी अभी में जियो, कल का मत सोचो। अच्छी बात है अभी में जीना, लेकिन अभी जो मेरी वर्तमान स्थिति है ये भूत का परिणाम है। मेरा वर्तमान ऐसे ही नहीं आया है, ये भूत के परिणाम से वर्तमान बना है, और यही वर्तमान भविष्य को पैदा करेगा। तो अगर भविष्य उज्जवल करना है तो तब वर्तमान को भी श्रेष्ठ करना, और वर्तमान श्रेष्ठ है, अवश्य मेरा भूत भी श्रेष्ठ था। तीनों कालों का आपस में संबंध है। तो जब ये बात समझ में आती है तो केवल भौतिकवाद में नहीं हम पढ़ेंगे, क्योंकि जानते हैं ये तो सब परिवर्तनशील है। परंतु दूसरी ओर वो भी हम नहीं है जो सन्यासी बन जाए, कुछ नहीं कुछ नहीं, हाँ सब माया है माया है माया, बाबा कहते वो भी नहीं। जो सन्यासी होंगे वो कहेंगे धन भी माया, स्त्री भी माया, बच्चे भी माया, संसार माया, सुख काग विष्टा समान, बाबा कहते ये भी नहीं है, ये माया नहीं है, धन माया नहीं है। धन तो लक्ष्मी के पास भी था, वो तो उसकी तो पूजा होती है, तो माया की थोड़ी पूजा होती है, वो तो देवी है। तो धन माया नहीं है, बच्चे माया नहीं है, बच्चे तो कहेंगे भाई ईश्वर की देन है, प्रभु की देन है, बच्चे तो निर्दोष है, उनका क्या दोष, उनको क्यों माया कहते हैं? तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को ये मध्य मार्ग सिखाया, जिसके आधार से हम नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप सहज बन जाते हैं। एक बाबा दूसरा न कोई, हाँ सब कुछ करते भी न्यारे और प्यारे। लॉकेट, और जो गरीब माताएं हैं उनको सोने का देंगे, जो अमीर है उनको चांदी का देंगे, ऐसे बाबा ने कहा। यानी ऐसे हंसी में कहा, ये नहीं कि भाई यहाँ जो धनवान है उसको ज्यादा महत्व है, गरीब है उनको कम, पर भाव है कहने का कि बाबा माताओं को देख करके कितना खुश होते थे। उस समय खास बाबा के दिनों में दो जगह से बूढ़ी बूढ़ी माताएं बहुत आती थी, एक गुड़गांव से आती थी बहुत बूढ़ी माताएं, और दूसरी ये पंजाब से, जो उस दिन बाबा ने याद किया, पता नहीं कौन सा स्थान बताया, वहां से बूढ़ी बूढ़ी माताएं आती थी। तो जब बूढ़ी माताओं को बाबा देखते थे, ब्रह्मा बाबा, तो इतने खुश होते थे। बाबा कहते ये मेरी हमजिंस आई है, क्योंकि बाबा की भी तो आयु इतनी बड़ी थी ना, 90 साल के थे बाबा, कोई कम थोड़ी थे। अभी दादी जान की हमारे सामने 92 साल के हैं, परंतु दादी जी की भी जो हिम्मत हम देखते हैं वो भी अवर्णनीय है। सचमुच बाबा ने उनको शक्ति दी है। दादी कई बार सुनाते हैं कि बाबा ये साक्षात्कार जैसे करती थी, बाबा को मैंने अपने कंधे पर बिठाया है और सारे विश्व में मैं उनको घुमा रही हूँ ऐसे। हा? एक बार दादी ने कई बार सुनाती है कि जब मैं शुरू में आई तो मैं एकदम पिजिन की तरह थी, जैसे कबूतर होता है ना, बिल्कुल कुछ नहीं बोलती थी, शांत रहती थी, बोलना आता ही नहीं था, पिजिन जैसे कबूतर हूं 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 केवल करता। लेकिन फिर पिजिन से मैं बन गई पैरेट, तोता। भगवान ने जो पढ़ाया वही बोलती थी, बाकी मुझे और दुनिया का ज्ञान नहीं आता है, भगवान ने जो पढ़ाया वही सुनाती हूँ। फिर पैरेट बन गई और अभी मैं बन गई हूँ पपेट। पपेट होता है ना कठपुतली, जहाँ नचाओ वहाँ नाचेगा। कठपुतली तो जिसके हाथ में डोरी होती है वही नचाता है, वो खुद तो नहीं, अपनी शक्ति है। तो दादी के मैं अभी वो पपेट का रूप हूँ, बस भगवान मुझे नचा रहा है, जहाँ नचाता है वहाँ मैं नाचती हूँ, वहाँ जाती हूँ। यानी कहने का भाव है कि दादी कैसे बस बाबा बाबा बाबा, उनके सिवाय दादी के मन में कुछ भी और नहीं है, बस सबको बाबा का संदेश मिले, सब बाप समान बने, सब इतना शिव परमात्मा को पहचाने, उनसे लगन लगाएं, अपने जीवन को पवित्र योगी बनाएं, यही दादी की लगन है। दादी का पहले प्लान भी था जाने का, कई प्लान्स बनते हैं दादी के, लेकिन फिर का नहीं, इतने सारे बच्चे आ रहे हैं, यहाँ ऊपर विंग्स का प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ इतने प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तो सारे प्रोग्राम कैंसिल करके दादी मधुबन में ही रहे, ताकि आप सबसे मिलना होगा, तो आज आपके सामने आ रहे हैं। खैर दादी, हो सकता है कुछ काम पड़ गया हो, खैर मैं वो बात कंप्लीट कर लूं जब तक दादी आए। तो बाबा ने हमें क्या सिखाया है, ये सब माया नहीं है। माया क्या है? धन माया नहीं है, पर धन के प्रति जो लोभ है वो माया है। बच्चे माया नहीं है, परंतु मोह माया है। फिर पुरुष लोग तो क्या कहेंगे, स्त्री माया है, पर बाबा कहेंगे नहीं, स्त्री तो शक्ति है, वो माया नहीं है, पर स्त्री के शरीर पर जो अधिकार है काम वासना का रूप, ये माया है। तो देखो बाबा ने माया का भी रूप बदल दिया, क्या है दादी, माया का भी अर्थ बदल दिया। तो सच्चा अर्थ बाबा ने बताया, दुनिया में तो कुछ नहीं जानते, इस संसार को भी क्या कहेंगे, ये प्रभु की माया है, ऐसे भी कह देंगे, किसके पास बहुत धन है कहेंगे इसके पास बहुत माया है। पर माया माना क्या, माया माना इल्यूशन, इल्यूशन माना कल्पना, ये कोई वास्तविकता नहीं है, कोई है नहीं कोई व्यक्ति के रूप में। आज भी बाबा ने कहा या कल कहा कि जैसे शिव बाबा करण करावन हार है, वैसे माया भी करण करावन हार है, करती भी है तो कराती भी है। तो इसीलिए माया को परखना, माया को पहचानना और उसको जीतना, ये हम बच्चों का कर्तव्य हो जाता है। माया कैसे पकड़ती है, थप्पड़ भी मारती है, हाँ फिर ठोंसा भी मारती है ना, मुक्का भी मारती है, फिर नाक भी पकड़ती है और कान भी खींचती है, कई रूपों से आती है माया। लेकिन हम अगर माया को समझ जाएंगे, अवश्य माया पर हम विजय प्राप्त कर ही लेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
मेरे दिल ने यही बात दिल से कही, दिल ने यही बात दिल से कही। तुझसे सब संबंध है मेरे, तुम ही शिक्षक सदगुरु हो, मेरे सदगुरु हो, मेरे दिल ने यही बात दिल से कही, एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई, मेरे दिल ने यही बात दिल।